हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि रिचर्ड ईटन ने बंगाल डेल्टा के संदर्भ में जिन तीन सीमांत विशेषताओं का उल्लेख किया था, जैसे राजनीतिक, कृषि और धार्मिक, वो किस तरह से नदी और खासकर गंगा जो है उस गंगा नदी के इर्द गिर्द पूरा जो डिबेट है वो केंद्रित रहा है। हमने ये भी देखा कि नदी और खासकर गंगा चर्चा के केंद्र में बनी रही, विशेष रूप से बंगाल में जो गंगा के बदलती धारा की अहम भूमिका है उसके बारे में हमने अध्ययन भी किया। विक्टर लिबरमैन ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में जो पिछले कुछ वर्ष पहले ही प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने यूरेशिया के प्रोटेक्टेड जोन यानी हम कहें तो संरक्षित क्षेत्र के की चर्चा की है, और उसके विपरीत दक्षिण एशिया के इंडो गैंजेटिक क्षेत्र में या उससे जो उसकी जो भूमि है उसमें एक्सपोज जोन का के बारे में वो बताते हैं। सो बेसिकली संरक्षित क्षेत्र और एक्सपोज क्षेत्र, इन दो तरह के जोन की वो चर्चा करते हैं। और उनके अनुसार संरक्षित क्षेत्र मध्य एशिया से चूंकि बहुत दूरी पर स्थित था इसलिए वो संरक्षित रहा, क्योंकि मध्य एशिया से वो दूर था ज्योग्राफिकली, जो तो खानाबदोश जो ट्राइब्स थी जो वो आक्रमण से उसके उसके आक्रमण से वो बचते रहे। दूसरी ओर जो एक्सपोज्ड एरिया है, एक्सपोज जोन है, जिसको हम हिंदी में उजागर क्षेत्र भी कह सकते हैं, वो बार बार तुर्की और मंगोल खानाबदोश द्वारा आक्रमण किए गए। सो बेसिकली हम देखते हैं कि इस एक्सपोज्ड एरिया में घोड़े की पीठ पर तुर्क या बाद में मंगोल तेजी से कहीं भी पहुंचने में सक्षम थे, और घोड़ों पर बैठकर वे भारत के एक्सपोज मैदानी क्षेत्र पर वो बार बार आक्रमण करने में सफल रहे हैं। लेकिन सुनने में ये दोनों जो तर्क दिए हैं और जो परिकल्पना विक्टर लिबरमैन ने दी है ये बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन एक प्रश्न जो अनुत्तरित है वो है कि दिल्ली सुल्तानों के प्रारंभिक इतिहास को अगर हम देखें तो ऐसा क्यों है कि बख्तियार खलजी जब दिल्ली में वो शासन नहीं करना चाहता है, वो दिल्ली से दूर कहीं जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर स्लेव्स के साथ जो दूसरे अन्य स्लेव थे मुइजुद्दीन के, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो बख्तियार खलजी जो है कहीं दूर जाके, उसको पता था कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में उसका किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, तो वो दिल्ली से दूर जाना चाहता है और वो बिहार की तरफ बढ़ता है। और बिहार से गुजरने के वक्त उसने कई जगह लूट खसोट की, कई जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है माना जाता है कि उसको भी उसने ध्वस्त किया, उसको जलाया। लेकिन ऐसा क्यों है कि इस मैदानी क्षेत्र जो ये मिट गंगा का क्षेत्र है जो आज बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर बख्तियार खलजी ने अपने आप को स्थापित नहीं किया और वो खुद को मध्य गंगा के क्षेत्र से दूर ले जाता है। हमने देखा पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि बंगाल में वो कैसे अपना शासन स्थापित करता और बंगाल में एक सल्तनत की स्थापना होती है। सो इसको समझने के लिए ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने सम्मुख रखा है, इसको समझने के लिए हमें लिबरमैन की इन दोनों परिकल्पनाओं को समझना जरूरी है। विक्टर लिबरमैन ने अपनी पुस्तक स्ट्रेंज पैरेलल्स, दो जो उन्होंने दो वॉल्यूम्स में लिखी है, उसमें उन्होंने यूरोप, जापान और इनफैक्ट दक्षिण एशिया का जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो मुख्य भूमि क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को उसने संरक्षित क्षेत्रों की संज्ञा दी है, यानी प्रोटेक्टेड जोन की संज्ञा दी है। वह इन क्षेत्रों की तुलना एक्सपोज्ड जोन यानी इंडो गंगा मैदान से करता है और चीन से करता है। सो चीन और भारत, इन दोनों को वो एक्सपोज्ड जोन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम एक्सपोज जोन को हिंदी में, जैसे उजागर क्षेत्र मैंने बताया कि उजागर क्षेत्र कह सकते हैं, उजागर क्षेत्र का जो राजनीतिक इतिहास है वो सेकेंड मिलेनियम में यानी दूसरी सहस्राब्दी में काफ़ी हद तक आंतरिक एशियाई, आंतरिक एशियाई से मतलब है जो तुर्की है, जो भारत के बाहर से आए थे उन, सो उस, ये जो एक्सपोज जोन क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि सेकेंड मिलेनियम में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो ज़्यादातर इन बाहर से आए हुए आंतरिक एशियाई लोगों द्वारा रचित हुई थी। लेकिन जब वो इन दोनों जोन्स की चर्चा कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड जोन और एक्सपोज जोन की, तो वो बताते हैं कि इन दोनों क्षेत्र के बीच कुछ समानताएं भी थी। संरक्षित क्षेत्र में कुछ समानताएं, कुछ बुनियादी जो विशेषताएं थी, जैसे जनसंख्या वृद्धि, कृषि विस्तार, यूरोपीय शैली की आग्नेय शास्त्रों की जो उपलब्धियां, स्थानीय और लंबी दूरी के जो व्यापार हैं, या जो साक्षरता है, या फिर कहें कि सैनिक प्रतियोगिता है, सो किस और विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी खोज है हुई है वो यूरेशिया में भी हुई और चीन और भारत जैसे देश में भी इस दौरान हुई है। और तो ये बताते हैं कि ये जो समानताएं हैं वो आपको दोनों जगहों पर मिलेंगी, दोनों जगहों पर इस तरह के कुछ बुनियादी विशिष्टताएँ थी वो इन क्षेत्रों में एक समान सी दिखती हैं। लेकिन दक्षिण एशिया में राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण के आंदोलन को अगर हम देखें तो वो चीन की तुलना में कहीं अधिक सीमित और नाजुक थे, लेकिन वहाँ भी दीर्घकालिक रुझान दिखते हैं। दक्षिण एशिया के जो प्रमुख साम्राज्य का अगर आप अध्ययन करें, जैसे हमने पहले आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया गया, जैसे मौर्य का शासन या गुप्तों का शासन, उसके बाद जब हम मध्यकालीन इतिहास में पहुंचते हैं तो दिल्ली सल्तनत को हमने पढ़ा, अर्ली मॉडर्न पीरियड में मुगलों को पढ़ा, फिर अंग्रेज़ों को पढ़ते हैं, ब्रिटिश पीरियड को पढ़ते हैं, इन सारी साम्राज्यों के इतिहास को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि इन क्रमिक साम्राज्यों के बीच का जो अंतराल है वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया है। सो खासकर जब हम 500 के दशक के मध्य में गुप्तों के पतन को देखते हैं और गुप्तों के पतन के बाद जो हमें एक बड़ा साम्राज्य दिखता है वो है दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य, तो वो गैप जो है बहुत लंबा है, यानी 6वीं शताब्दी से लेकर आप सीधे 13वीं शताब्दी तक ये लंबा गैप आपको दिखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त काल के बाद सबसे लंबे युग समय तक एक अंतराल रहा भारत में जब किसी प्रकार का बाहर से इन्वेजन नहीं हुआ है, और करीब करीब 13वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के की स्थापना होती है। परंतु दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद यानी 14वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत का पतन होता है तो जो दूसरा साम्राज्य स्थापित होता है वो मुगलों का साम्राज्य है, उसकी अवधि जो है वो कम हो जाती है, ये जो गैप है दोनों के बीच, दोनों साम्राज्यों के बीच, वो कम हो जाता है। यानी थोड़े ही समय के बाद, थोड़े अंतराल के बाद आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। 13वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विशेष रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन होते हैं, सैन्य और राजनीतिक संगठन की दक्षता बढ़ती है। अगर आप देखिए तो पूरे देश में एक तरह से व्यापार का विस्तार हो रहा है, कृषि का के निरंतर विस्तार हो रहा है, वाणिज्यिक सर्किट में भी विस्तार हो रहा है। और इस तरह के जो विस्तार हैं वो आपको ना केवल भारत में दिख रहे हैं बल्कि यूरेशिया में भी दिख रहे हैं। तो ये जो कुछ समानताएं हैं वो आपको दोनों जगह दिखेंगी, लेकिन साम्राज्यों के बीच के जो गैप्स हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में बढ़ते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं जब एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। लेकिन जो साम्राज्य के रिप्लेसमेंट हैं वो भी बाहर से ही स्थापित हो रहे हैं, यानी इनर एशियंस पहले तुर्कों के रूप में और फिर मंगोलों के रूप में भारत में अपना शासन स्थापित करते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों जो जोन है, प्रोटेक्टेड जोन और एक्सपोज जोन, इनमें तीन प्रमुख अंतर हमें दिखते हैं। एक तो जो आंतरिक एशियाई भेद्यता है, जो वल्नरेबिलिटी है, उसका वो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा आपको एक्सपोज जोन में दिखेगी। दूसरा, विकासात्मक कालक्रम, क्रोनोलॉजिकली आप देखिएगा कि जब क्रोनोलॉजिकली हम आगे बढ़ते हैं तो साम्राज्यों के बीच के गैप जो हैं वो कम हो चले जाते हैं। और तीसरा जो मुख्य अंतर है वो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी, यानी दोनों की, दोनों जो एक्सपोज जोन है और प्रोटेक्टेड जोन है, दोनों की जो पारिस्थितिकी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जहाँ पश्चिमी और उत्तरी यूरोप या जापान में मुख्य जो भूमि थी दक्षिण पूर्व एशिया की, वहाँ तेजी से जो व्यवसाय है वो आंतरिक एशियाई व्यवसाय वो बढ़ रहा है, लेकिन भारत के में जहाँ तुर्की या जो इनर एशियाईज हैं वो बाहर से आते हैं, वहाँ इन क्षेत्रों में उनका जाना आसान नहीं है। चूँकि वो घोड़ों पर आते थे इसलिए ये संभव नहीं था कि इस तरह की जो ज़मीनें हैं जो प्राकृतिक रूप से घोड़ों पर चढ़ने के लिए या घोड़ों से आक्रमण करने के लिए उनके हिसाब से नहीं थी, तो ये मुश्किल हो जाता है कि वो इन लैंड्स में एंटर कर सकें। अगर आप देखें तो हमारा जो पूरा मध्यकाल है, इनर एशियाइयों ने यानी तुर्कियों ने चीन और दक्षिण एशिया में राजनीतिक विकास जो हुआ उसका निर्देशन किया पूरा सेकेंड मिलेनियम में अगर आप देखें, और साथ साथ ट्रांस ऑक्सियाना हो या पर्जिया हो या दक्षिण पश्चिमी एशिया हो, इन हिस्सों में और दक्षिण पूर्व यूरोप जो कि सेल्जुक मंगोल और मामलुक और के नियंत्रण में थे, यहाँ से इनर एशियाई लोगों का एक्सपोज्ड एरिया में यानी भारत और चीन जैसे इलाकों में आक्रमण होता है। परिस्थितियाँ अलग होती हैं, वो आपने देखा है कि इतिहास में अलग अलग कारण बताए गए हैं कैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में वो इन रूलर्स को, जो मामलुक रूलर हैं या टर्क्स हैं या ऑटोमन्स हैं, इनके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो कैसे फोर्स करते हैं कि जो टर्क है वो बाहर किसी दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करें। लेकिन जो विक्टर लिबरमन ने प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये जो तुर्की थे ये यूरेशिया जैसे क्षेत्र में नहीं एंटर कर पाते हैं, और उन्होंने भारत जैसे एक्सपोज जोन को चुना है। और उसके पीछे वो सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि इन क्षेत्रों में घोड़ों के द्वारा आसानी से मूवमेंट किया जा सकता था। हालांकि नदी घाटियां में और तुर्कमेनिस्तान में जो ओएसिस है वहाँ पर जो कृषि होती थी, वहाँ पर जो जिस प्रकार की खेती होती थी या शिकार की जिस तरह से किया जाता था, वो बेसिकली कंप्लीटली डिफरेंट थी भारत के खाना जो भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है उससे। तो जब वो बाहर से आते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते, उनको ये अद्भुत लगता है और भारतीयों को भी ये अद्भुत लगता है जब वो बाहर से आए हैं तुर्की, तो उन्हें भी एक अलग तरह का की वेशभूषा दिखती है, अलग तरह का कल्चर दिखता है। दक्षिणी स्टेपी से या जो ग्रासलैंड है या रेगिस्तान से वो ऊँट पर आते हैं, जबकि उत्तरी स्टेपी में बेहतर पानी वाला जो घास के मैदान थे वहाँ भेड़ बकरियाँ मवेशियों की विशाल संख्या थी, और यहाँ घोड़े भी कृषि क्षेत्रों की के घोड़ों की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर और तगड़े थे। तो इस क्षेत्र का जो नोमैडिक टाइप था उसके पास सदियों का पुराना एक्सपीरियंस था, कौशल था, जो शिकार पर केंद्रित था, उसकी उनके युद्ध करने की प्रवृत्ति थी, और वो घोड़ों पर चढ़कर धनुष बाण चढ़ाने में उनको प्रवीणता मिली हुई थी। ये सारी चीज़ें उनको एक तरह से युद्ध कौशल में लचीलापन देती थी, उनके मूवमेंट को गतिशीलता देती थी। साइमन डिग्बी ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है इसके बारे में, जब जहाँ उन्होंने इसकी चर्चा की है कि कैसे तुर्क जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं भारत में। उनकी किताब अगर आपने पढ़ी होगी, वॉर हॉर्सेज एंड एलिफेंट, उस किताब में वो बताते हैं कि किस तरह से उनकी जो गतिशीलता है वो घोड़ों पर के कारण थी। सो जो ये जो बसा हुआ कृषि प्रधान समाज था भारत का, वहाँ पर जो युद्ध के लिए प्रशिक्षित पुरुष होते थे उनका प्रतिशत उतना ज़्यादा नहीं था जितना तुर्कों में मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या जो है यहाँ वो कृषि के क्षेत्र में लगी हुई थी। तुर्कों ने पूरा इसलिए मेसोपोटामिया से होते हुए ईरान के होते हुए भारत और चीन पर आक्रमण वे बार बार आक्रमण करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उजागर क्षेत्र जो है, ये जो एक्सपोज जोन है, इसकी जो भेद्यता है, इसकी जो वल्नरेबिलिटी है, उसके व्यावहारिक परिणाम क्या थे? जहाँ संरक्षित क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो राजनीतिक विकास राजकीय स्थानीय संभ्रांत लोगों के हाथों में रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन का इतिहास देखें तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वो बेसिकली इन इनर एशियाओं एशियाइयों के बदौलत हुआ है, जिन्होंने स्थानीय आवश्यकताओं को बदल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है। और अगर आप देखें तो इन्होंने इनकी जो जो दक्षिण एशिया यूरोप के विपरीत यहाँ एक स्थायी प्रतिस्पर्धी बहुस्तरीय प्रणाली आगे विकसित हुई थी, लेकिन अगर आप ध्यान दें, अगर इतिहास के पन्नों को पलटें, तो उत्तर पश्चिम में मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारी कई घुमंत पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, जो ये तुर्की थे, वो अपने घोड़ों से के द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच जाते थे, और कई बार उनको और भी अधिक सैनिक की जब ज़रूरत होती थी तो घोड़े से ये तुर्की आगे के दलों में शामिल हो जाते थे। सो तुर्क विजय जो है दिल्ली सल्तनत को और मुगल साम्राज्य को, जब बाद में मंगोलों का आक्रमण होता है, वो एक तरह से अब उनके घोड़े की निपुणता के कारण, अच्छे घोड़ों की उपलब्धि के कारण ज़्यादा अधिक पावरफुल बनाता है, और यहाँ भारत जैसे क्षेत्र में वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। संरक्षित क्षेत्र के विपरीत जो प्रोटेक्टेड जोन है उनके अगेंस्ट अगर आप देखें तो इनर एशियाई का प्रभाव दूसरी सहस्त्राब्दी के दौरान स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। कुछ मायने में मुगलों ने मानचूज जो थे चाइना की, उनकी तुलना में अपनी में आबादी से, सांस्कृतिक रूप से बहुत दूर होते चले गए थे। अगर आप देखें तो मुगलों ने आसानी से स्थानीय कुलीनों को अपने कल्चर में शामिल किया या उनकी परंपराओं को उन्होंने अपनाया। फिर भी कई बार शुरुआत के दिनों में दिल्ली सल्तनत एक अपने कल्चर को लेकर आता है और भारत, ये जो पारस इस्लामिक संस्कृति है, वो भारत के सामने उसको प्रस्तुत करता है। और खासकर नोबिलिटी के लेवल पर, कुलीन स्तर पर इसको वो लागू भी करता है। अब सवाल ये उठता है कि विक्टर लिबरमैन ने जो ये दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, एक जो प्रोटेक्टेड जोन वो बताते हैं और दूसरा एक्सपोज जोन। जहाँ तक एक्सपोज जोन का सवाल है, क्या उनकी ये परिकल्पना पूरे इंडो गैंजेटिक फील्ड पर लागू की जा सकती है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? कि अगर आप देखें तो मिड गंगा का जो क्षेत्र है उसकी अपनी विशेषताएं थी। वो जिस तरह की वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टर्की वल्नरेबिलिटी या मंगोल वल्नरेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, जो इनर एशियंस की बात कर रहे हैं, वो अगर आप इतिहास देखेंगे पूरे मध्यकाल का और अर्ली मॉडर्न पीरियड का इतिहास, तो मीट गंगा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर इन दोनों दोनों योद्धाओं को, इन दोनों ताकतों को मीट गंगा क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करने में परेशानी हुई है। इसलिए ये जो मॉडल है विक्टर लिबरमैन का, खासकर जो एक्सपोज जोन का मॉडल है, वो उसको मिड गंगा के क्षेत्र में मेरे हिसाब से लागू नहीं किया जा सकता। मिड गंगा में खासकर जो बिहार का क्षेत्र है उसका अपना एक रीजनल आइडेंटिटी है। वो रीजनल आइडेंटिटी फॉर्म होती है नदियों के और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, उसके इर्द गिर्द। और उसने बहुत कुछ वहाँ की जो इकोलॉजी है, उसने बहुत कुछ वहाँ के कल्चर को डिसाइड किया है। और जो ये ताकतें नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही थी, उन ताकतों को भी कई तरह की परेशानियाँ मिड गंगा क्षेत्र ने प्रस्तुत की हैं। और इसीलिए जो हमारा शुरुआत का प्रश्न था कि क्या बख्तियार खलजी क्यों ऐसा था कि वो मिड गंगा क्षेत्र में अपना शासन स्थापित नहीं करने की बजाय बंगाल में अपनी सल्तनत स्थापित करने का प्लान करता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये जो यहाँ का रिवराइन कैरेक्टरिस्टिक्स है मिड गंगा क्षेत्र का, जो अड़चने हैं, जो ये साबित करती हैं कि ये पूरा का पूरा इंडो गैंजेटिक एरिया को एक कैटेगरी यानी एक्सपोज जोन की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। मिड गंगा क्षेत्र के अपनी प्रकृति थी, वो घोड़े पर चढ़ने वाले इन योद्धाओं के लिए बहुत से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती थी। और इसलिए जब हम मिड गंगा क्षेत्र के इतिहास को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि एक्सपोज जोन थ्योरी यहाँ के क्षेत्र पर लागू नहीं की जा सकती है।